ओम शांति। 14 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना सौभाग्य बनाना, अपना सौभाग्य बनाना है जी, तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उच्छल आनी चाहिए। बस हम तो बाप पर कुर्बान जाए, कौन कौन बाकी नहीं, बाकी हाँ जी हम सब माताएं कन्याएं हैं। हाँ, हम माताएं कैसे बन जाएंगे? माताओं कन्या, माताओं और कन्याओं दो को कहा है। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती, बाप का नाम बाला कर सकती। प्रश्न, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? कन्याओं को ठीक है क्या नहीं, तो कन्याएं बताएंगी ना। उत्तर है, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ, तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोकलाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा, दाग लग जाएगा तुम्हें। रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है, तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे, हजारों तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। तो कन्याओं को आज विशेष बाबा के सामने कन्याएं बैठी हैं और उन्हें ये समझाया जा रहा है, क्योंकि ये अधिकार, मुरली सुनाने का अधिकार कन्याओं को ही मिलता है, क्योंकि वो पवित्र हैं जी। ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो उछल मारने वाली, बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती, मौलाई मस्ती। मौलाई किसे कहते हैं? ईश्वरीय, क्योंकि मालिक है जो सारे संसार का, संसार का जो मालिक है वो, उसके हम बच्चे हैं। ये नशा, ये मस्ती, ये खुशी, ये उमंग, ये उत्साह आपके पास, क्योंकि उर्दू शब्द हाँ जी, हाँ मोलाई मोला बोलते हैं ना, भगवान ही बस मालिक है, वही सारा मालिक है, वो हम सब का मालिक है। तो बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे, क्योंकि बाबा तो सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको देखकर मुरली चलाते हैं ना, बाकी तो पता है कि भी आगे चलकर के मुरली सबके सामने चलनी है। कौन कौन बैठे हैं? वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हरेक के ऊपर नजर पड़े, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो टीचर को दिखाई ना दे, ताकि उसके चेहरे से समझ सके कि इसको कौन सी बात समझ में आ रही है और कौन सी बात समझ में नहीं आई है, और वो उसे समझा सके। टीचर की हरेक के ऊपर नजर पड़े, ये जैसे सत्संग हो जाता है। परंतु क्या करें, बाबा कहते क्या करें, बाबा खुद कह रहे क्या करें, कोई और कहे तो बात अलग है। ड्रामा की भावी ऐसी है, जिसके आगे ड्रामा, बाबा भी, बाबा को भी कहना पड़ता है क्या करें। बाबा से भी ऊपर है ड्रामा, क्योंकि बाबा से ऊपर ड्रामा क्यों है, क्योंकि बाबा को भी ड्रामा अनुसार चलना होता है, क्योंकि बाबा ड्रामा के लॉ को तोड़ नहीं सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है, क्योंकि जो कानून बनाता है वो स्वयं भी उस कानून को ना तोड़े तभी है। यदि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, कानून को तोड़े, तो फिर अनेक रास्ते औरों के लिए भी खुल जाते हैं। क्लास में नंबर वार बिठा नहीं सकते कि भाई जो होशियार हो उसको आगे बिठाया जाए, जो नालायक है उसको पीछे बिठाया जाए, ऐसा कर नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं, परमात्मा आए हैं हम देखें परमात्मा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, चाहे दूर बैठे हो चाहे पास बैठे हो, मतलब सब देखना चाहते हैं। मतलब बाबा टीचर है वो सबको देखना चाहता है। तो जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो एक्चुअल में स्टूडेंट होते हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारे को एक एक बात समझ में आए। हमें टीचर की यदि शक्ल ही नहीं दिखाई देगी तो वो जो बोल रहा है वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो टीचर की शक्ल दिखाई देनी चाहिए, टीचर के हाव भाव से पता लगता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। कुछ बातें तो शब्दों से समझ में आती हैं, बाकी उनके हाव भाव से भी समझ में आती हैं। तो मुखड़ा क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके हाव भाव भी उनको समझ में आए। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा रहता है समझते हैं, बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो, भारत में तो क्या सारी दुनिया में सोजरा करने वाले, भारत में तो क्या तुम सारी दुनिया में क्या करने वाले हो, सोजरा करने वाले हो। गीत, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र हैं। क्या कहा है, क्यों कहा कि गीत शास्त्र है? गीत जो भी बनाए जाते हैं वो शास्त्रों को सुनते हैं, वो शास्त्र लिखे हुए हैं संस्कृत में, उनको अपनी भाषा में, चाहे वो बिहारी में, चाहे बंगला में, चाहे असमी में, चाहे हिंदी में, जो भी जहाँ की भाषा होती है वो अपनी उस अपने इलाके की भाषा में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, सर्व शास्त्रों में श्रेष्ठ क्या है, गीता। और सभी शास्त्र महाभारत रामायण शिवपुराण वेद उपनिषद आदि इसमें से ही निकले हैं, गीता में से ही निकले हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है, गीता लिखी गई अब से 2000 साल पहले, वेद लिखे गए उससे भी पहले, तो वो गीता में से कैसे निकले, वो गीता में से कैसे निकले? ठीक है ना। चलो पुराण तो बाद में लिखे गए, रामायण पुराण है, भागवत पुराण है, महाभारत पुराण है, और भी जितने पुराण हैं वो सारे के सारे 2000 के बाद लिखे गए, और वेद लिखे गए पहले। चलो बाकी तो जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये एक ही टाइम में लिखे गए। अब हर एक लेखक अपने अपने विचार से लिख रहा है, फिर बताओ कि गीता में से वो कैसे निकले, क्योंकि वो गीता पढ़ने के लिए तो नहीं गए, और जो गीता के बाद आए वो भी गीता पढ़ने के लिए नहीं गए। अब जो कुछ वेदों में लिखा है वही गीता में लिखा है, तो वेद पहले लिखे गए हैं, वो कुछ कुछ श्लोक गीता में भी हैं, जो वेदों में हैं वो गीता में भी हैं। तो पहले वेदों के आधार पर गीता लिखी गई या गीता के आधार पर वेद लिखे गए, कैसे?
பார்த்துட்டு எல்லாருக்கு மேலும் மூலிகை அமர் பாயிண்ட்
कहाँ मिलेंगे वो पॉइंट? दबे हुए, दबा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। जब ये आपके मकान, ये लोहे, ये सरिये और ये स्टील और क्या बोल प्लेटिनम, ये सारे जल जाएंगे तो वो कागज बचे रहेंगे? दादियों को तो बुद्धू बनाया बाबा ने, बाबा तो बड़ा चलाक है ना। दादियों को कहा कि सारे, क्योंकि पहले हाथ से लिखते थे, मुरलियां हाथ से लिखते थे। अब देखिए कि 300-350 भाई बहन थे, चलो बाकी कुछ उनमें अनपढ़ होंगे, नहीं लिखते होंगे, हम आधे ले लें। आधे भी यदि मुरली लिखने वाले हों और कागज पर लिखने वाले हों और कागज पर मुरली, आप कितने पेज रोजाना लिख दोगे? जो बाबा ने मुरली चलाई कितने पेज एक बार लिख दोगे? फिर उसके बाद उसको ठीक करोगे, फिर साफ लिखोगे, फिर मम्मा से जो है ना उसको वेरीफाई कराओगे, तो जो करेक्शन होगी फिर उनको दोबारा लिखोगे। चलो बाबा के पास तो पैसे फ्री के थे, कागज ला के ढार कापियां ला के डाल देते होंगे। अब कितने रजिस्टर भर के थे, अब वो इतने रजिस्टर भर गए, उन रजिस्टरों को लाने का किराया बहुत ज्यादा लग रहा था, क्योंकि जहाज पर लाना है सामान, तो सामान तो फिर वजन के हिसाब से बात बनती है ना। अपना अपना जरूरत वाला सामान लेके जाएं कि उसको लेके जाएं, तो ये पता किया गया कि उस पर खर्चा बहुत ज्यादा होगा, तो उनके लिए इनको तो मोह है, फिर इनकी ड्यूटी लगाई कि आप इसमें से देखो भाई, जो मेन मेन बातें हैं उनको आप अलग से नोट कर लो, इनको यहाँ छोड़ दो, ये फिर शास्त्र बनेंगे। वरना वो मोह थोड़ा छोड़ते, उनका तो मोह था, फिर वहां से वो डायरियां अपने बना बना के एक एक कॉपी बना बना के ले आए, जो मेन मेन पॉइंट भी आप इसमें से नोट कर लो, बाकी इतना सारा क्या ले जाएं, कहां ले जाएं, इसका खर्चा ज्यादा है। उनको समझाया तो उन्होंने उसको ट्रंक, नए नए ट्रंक मंगवाए, नए नए ट्रंक, अब लोहे के ट्रंक मंगवाए, उनके अंदर उनको भरा और गड्ढे खोद करके उनको दबा दिया। ठीक है, आप समझ सकते हैं, तो लोहे के ट्रंक में दबा के उसके अंदर दबा दिया, नमी तो जमीन में रहती रहती है, ट्रंक को ही जंग लग जाएगा, कब तक चलेगा ट्रंक? और उसके बाद वो किताबें, वो तो वैसे ही गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, ठीक, नमक नहीं रखा नहीं तो स्वाह हो जाता है एकदम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे विचारधारा वाले चले गए, वो कहते हैं इन्होंने मुद्रा दबा दी। क्यों दबा दी? क्योंकि एक तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी, 300 जने रोज आना लिखे, 5-6 पेज, 8 पेज, 10 पेज लिख दे तो कितना हो जाएगा, और 1 साल 2 साल नहीं, 14 साल की मुरली। हाँ जी, मतलब वही ना, हर एक के अपने अपने जो है ना वो कमरा भरा पड़ा था। अरे बाबा, वो शास्त्र जल वो गल जाएंगे, आप 14 साल के बाद आज तक सोचो कि वो शास्त्र वो रखे हैं आज तक, अब आप आज की डेट में भी आप उनको खोदो तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये शास्त्र कैसे लिखे गए, यही बात आज समझनी है। तो वो गीता वो है जो बाबा ने अब सुनाई, ये है सच्ची गीता, क्योंकि वो तो बाद में लिखे जाएंगे ना, जो ये बाबा सुना रहे हैं ये है सच्ची सच्ची गीता, जिसके आधार पर सारे धर्म पिताएं आकर ज्ञान लेंगे, सभी धर्म पिताएं आकर ज्ञान लेंगे और अपने अपने रीति से ज्ञान को समझेंगे, ठीक है, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे आकर के, क्योंकि जो भी बाबा लिख के लिए, जो बाबा ने मुरलियां पढ़ा दी, ये भी बचने वाली नहीं है। वो दुनिया की जो रामायण भागवत जो भी पुराण जो भी दुनिया भर की किताबें हैं वो सब जल करके राख हो जाएंगी, ये भी जल करके राख होगी, बाबा ने कहा ये भी तुम्हारी कोई सुरक्षित नहीं रहेंगी। क्या सुरक्षित रहेगा? जो कुछ आप ज्ञान को सुनकर संस्कार बनाकर जाएंगे, उन संस्कारों के आधार से जो सतयुग में आएंगे, जिन्होंने 100% परमात्मा के डायरेक्शन पर संस्कार बनाए होंगे, और जो लेट आएंगे उनके उतने कम संस्कार बनेंगे, तो वो उन संस्कारों के आधार पर अपने शास्त्र लिखेंगे। व्यास आएगा तो उसी प्रकार से महाभारत लिखेगा, राम और वाल्मीकि आएगा तो उसी प्रकार से फिर वाल्मीकि रामायण लिखेगा, समझ गए मेरी बात को? वेद जो बुजुर्ग जो जाएंगे वो अपने हिसाब से ही जो कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे वो आकर के वहां पर लिखेंगे। तो ये ज्ञान श्रुति से चलता है। हाँ जी, इस गीता के आधार पर जो वो समझ कर गए हैं। अब जैसे यहाँ पर जितने भी जने हम यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, हमने मैंने गीता अपने अब मैंने ज्ञान को अपने हिसाब से लेना है, आपने हिसाब से लेना है, आपने हिसाब से लेना है, और जो कहीं भी बैठकर सुन रहे हैं उन्होंने भी ज्ञान को अपने हिसाब से लेना है और अपने हिसाब से संस्कार बनाएंगे। सबके संस्कार एक जैसे नहीं बन सकते हैं। तो ये बात समझनी है कि वो गीता नहीं है, ये गीता है जिसके सारे शास्त्र क्या हैं, बाल बच्चे। दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सब इस गीता के बाल बच्चे हैं जो अब बाबा सुना रहा है। इसको कितना ध्यान से सुना जाए, कितना ध्यान से समझा जाए, कितना इस पर मनन मंथन किया जाए, ये अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले नाटक के फिल्मों के गाने चलाते हैं। शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं, शास्त्र तो इनके पास कोई है नहीं। क्वेश्चन खड़ा करते हैं ना, पूछते हैं बाबा, बाबा को मालूम है क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, तो उनका जवाब दे रहे हैं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। अब समझ में आई बात? क्योंकि जो भी भजन जो भी शास्त्र पढ़ा तो जो सुनने वाले हैं वो उनको सुनकर अपनी भाषा में कविता गीत बना देते हैं, भजन बना देते हैं। एक वो लक्ष्मीराम हुआ, लक्ष्मीचंद हुआ ना, लक्ष्मीचंद। हाँ, लक्ष्मीचंद क्या था, कोई उसके अंदर अपने अंदर ज्ञान भरा हुआ था क्या? जागरण एक लक्ष्मीचंद जो है ना कवि हुआ, रागनी गाने वाला हुआ, सांगी का थे ना, तो वो जो है ना इन पुराणों को पढ़ता सुनता और उसके आधार पर कविता बना देता। अब आम व्यक्ति तो संस्कृत में नहीं पढ़ सकता, आम व्यक्ति तो संस्कृत वाले शास्त्र नहीं पढ़ सकता, उसे तो हिंदी में और अपने गांव की भाषा में जो बोलेंगे उसको समझ में आ जाएगा। अब बिहार वालों को बिहार वाली भाषा में बोलेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, संस्कृत वाले वो बेचारे कहां समझेंगे अनपढ़। तो उनको अपनी वहां की भाषा में सुनाया। तो इसीलिए बाबा कहते मैं यदि संस्कृत का श्लोक उठाऊं आपको समझाने के लिए तो आपको भी संस्कृत समझ में नहीं आए, और जो गीत तुम सुनते हो वही तो है जो शास्त्रों में लिखा है, उसी के तो गीत बनाए हैं। अब उन गीतों को मैं बताता हूं तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, ये मम्मा, ये है मम्मा की महिमा। गीत बजा माता, ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता, ये मम्मा की महिमा है। माताएं तो ढेर हैं परंतु मुख्य है जगत अम्बा, मुख्य है जगत अम्बा, यही जगत अम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है, यही फिर क्या करती है स्वर्ग का द्वार खोलती है। फिर पहले वे खुद ही जगत का मालिक बनती है, तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो, उनका ए उनका ही गायन है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख गने रे। शिव बाबा को ही मात पिता कहा जाता है, भारत में जगत अम्बा भी है और जगत पिता भी है, भारत में जगत अम्बा भी है जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है नामी ग्रामी, वहां ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, एक सारस्वत ब्राह्मण होते हैं और दूसरे पुष्करणी ब्राह्मण होते हैं। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को ये थोड़े ही पता है, कहेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, जगत अम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते, ब्रह्मा को दुनिया में इतना नहीं जानते। किसको धन बहुत मिलता है तो समझते हैं साधु संतों की कृपा हुई, हमने साधु संतों के पास गए उनके सानिध्य में हम बैठे और उन्होंने हमारे लिए धन की व्यवस्था कर दी, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, जो हमारी नौकरी लग गई, हमारा बिजनेस चल गया, हमारे पास ये सुविधाएं आ गई, ये सुविधाएं आ गई, हमारा बच्चा हो गया। साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा नहीं कर सकते, हाँ, सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं, अगर ये सन्यासी पवित्र ना होते तो भारत जल मरता। बाबा कहते हम उन सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, यदि ये सन्यासी ना होते तो ये भारत जल मरता। परंतु सदगति दाता तो एक बाप ही है, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। बाबा ने समझाया है कि तुम सब सीताएं हो, कहां हो, शोक वाटिका में, अशोक वाटिका में, हां जी, तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में, दुख में शोक तो होता ही है, होता है ना, बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा, बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहे, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाएं, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूं, माया रावण ने तुमको दुख दिया है, मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता, सब कहते हैं भगवान ने दुख देने लिए सृष्टि रची, रची है क्या, भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या, स्वर्ग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे, यहां दुख है तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी, भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख की सृष्टि रचना की, और कोई काम ही नहीं था भगवान को, स्वर्ग बना देता उसका दर्द क्यों बनाया उसने, क्योंकि वो तो ये कहते हैं बांटने वाला बांट रहा, किसी के खाते में सुख और किसी के खाते में दुख, ठीक है ना, फिर आगे क्या कह देते हैं कोई कारण होगा, ठीक है, किसी की झोली में सुख तो किसी के झोली में क्या है दुख, कुछ है ऐसा गीत ना, कोई कारण होगा, मतलब बेचारों को नहीं मालूम ना भाई भगवान क्यों बांट रहा है, किसी को सुख दे रहा है, किसी को जो है ना दुख दे रहा है, तो कोई कारण तो होगा, परंतु कारण के लिए वो क्या कहते हैं वो ही जाने क्या कारण होगा, हमें नहीं पता। सन्यासी साधु संत ये सिर्फ कह देते हैं ना, फिर उसके बाद ये कहते हैं भाई वही जाने उसकी गत मत, वही जाने हम और न जाने कोई, सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है, भारत पर ही खेल है, राम और रावण का, राम और रावण का, भारत की रावण से हारे हार है, फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं, राम कहा जाता है शिव बाबा को, राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है, समझाने के लिए शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद, उनमें है पद, स्वर्ग में तो देवताएं ही रहते हैं, अच्छा स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो, गीत, फिर वही माता, भारत की सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा ही है, हाँ बार बार वही गीत बज रहा है, भारत की सौभाग्य विधाता ये जगत अम्बा ही है, उनको कोई जानते ही नहीं, अम्बा जी पर बहुत मनुष्य जाते होंगे, देखा है अम्बा जी का मंदिर, नहीं देखा, हाँ नहीं देखा, हम तो देख के आए थे, हम गए थे, देखा था सीढ़ियां, हम पैदल सीढ़ियां चढ़े थे सारी, वो अम्बा जी का मंदिर देखने के लिए उतरे। और दो दो रास्ते हैं, एक रास्ता है उड़न खटोले से जाओ ऊपर, और एक रास्ता है सीढ़ियां, और खड़ी सीढ़ियां हैं फुट 1.5 फुट की ऊपर, मतलब आम व्यक्ति चढ़ नहीं सकता उस पर, ठीक है न। तो हम उनसे अम्बा जी का मंदिर है, और ऊपर जाकर हमारे ऊपर जाकर इतनी ही जगह है जिसमें एक कमरे में इतने से हिस्से में एक छोटी सी जगदम्बा की मूर्ति रखी हुई है, और बाकी सारे आगे वो उर्ण खटोला वहां जाके उतरता है, चोटी के ऊपर बना हुआ है वो, तो उर्ण खटोला वहीं उनको उतारता है, इधर से आओ इसको देखो और दूसरी तरफ से निकलो, फिर बैठ के बैठो और नीचे जाओ। फिर नीचे उतरने के लिए रास्ता दूसरा है, वो मतलब नीचे उतरने के लिए सीढ़िया नहीं है, वो ऐसे ढलवा उतरते आओ धीरे धीरे धीरे, हाँ ढलान से, कुछ सीढ़ियां हैं कुछ वैसे है, चढ़ने वाला रास्ता सीढ़ियों से है परंतु उतरने वाला रास्ता ढलान से है। अम्बा जी पर तो बहुत मनुष्य जाते होंगे, ये बाबा भी बहुत बार गया, ब्रह्मा बाबा भी बहुत बार गया, बबूरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ भी पता नहीं था, इसको भी कुछ भी पता नहीं था जिसके शरीर से बोल रहे, बेइज्जती कर देता है बाबा, कितना बेसमझ थे। अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है, जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अम्बा जी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए, ठीक है, वहां जाकर क्या करो, सर्विस करनी चाहिए। जगत अम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। कौन बताएगा जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी, किसको पता है? कृष्ण के जन्म की तो पता है, परंतु जगदम्बा की तो नहीं पता ना, पता है, वही कथा है, वही है, 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म, बस खत्म बात। कृष्ण की जगह पर वहां पर क्या कह देना है, जगदम्बा कह देना है, वही हमारी है, क्योंकि जगदम्बा मीन्स राधा या लक्ष्मी, ठीक है। तो इस प्रकार से 84 जन्म की कहानी उनको सुनाओ। ऐसे तो मंदिर बहुत है, मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं, इस मम्मा का चित्र दिखाएंगे ना, कहें नहीं ये मम्मा नहीं है, जो हमारा मम्मा का चित्र है वो कहेगी ना ये चित्र मम्मा का नहीं है, मम्मा तो चाहिए जो शेर पर बैठे और 4 हाथ 8 हाथ 16 हाथ होने चाहिए, मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा इस अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ, अम्बा की जो मूर्ति है ना, जो उसके ऊपर उनको समझाओ, साथ में ये गीत ले जाओ, अपने मम्मा का चित्र, असली मम्मा का चित्र मत दिखाना, जो नकली चित्र है उसी पर ही उनको समझाना, फिर उनको बताएंगे कैसे होता है। ये गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए, जो सेवा करने जाए उन बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। तुम ये गीत जगत अम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है, जगत अम्बा की इतनी भुजाएं क्यों दी है, उनको पूछो कि इतनी 8 भुजाएं, कहीं कहीं 16 भुजाएं दी हैं, तो क्यों दी हैं? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत है, शक्ति सेना है ना, तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखा दी हैं। शरीर कैसे दिखलाते हैं, बाहें निशानी सहज है, शोभती हैं, टांगे दें तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए। अब 2 टांगे दी हैं, अब उनको लगा दो जरा 4 टांगे, क्या क्या शक्ल हो जाए, क्या हालत हो जाए, है नहीं? 16 लगा दो टांगे, हाथ तो आप कितने भी लगा दो चल जाएगा काम, परंतु टांगे फालतू कर दो तो बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे ना सके, तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना सही। अपना सौभाग्य बना लो। अंबा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे सुनने के लिए। तुम इतना नाम निकालेंगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकाल सकती निकालती। वो जाके इतना अच्छा नहीं समझाती जितना तुम कुमारियां जाके समझा सकती हो। ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती हैं। बाबा सिर्फ एक को नहीं सब कन्याओं को कहते हैं, हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे, हजारों आकर और सेवा नहीं करेंगे फिर उन कुमारियों के चरणों में गिरना पड़ेगा। उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ इसमें लोक लाभ को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्टो मुआ होना है। कहेंगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगी। अधर कुमारी को तो कीट को तो फिर भी दाग लग जाता है, कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं सगाई करते ही, जो कि संकल्प तो खराब हो गए ना, दाग लगने शुरू हो जाते हैं, रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है, मम्मा भी इस जन्म में हुई है, उन्हों को मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। मम्मा को मिलता है 21 जन्म के लिए, उनको मिला है थोड़े समय के लिए मर्तबा, और मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम भी नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बन रही हो, संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर देवी जन्म मिलेगा। उन्हों को तो है अल्पकाल का सुख, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। हम तो हैं गुप्त, हम क्या हैं गुप्त, किसी को पता ही नहीं है। हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वे शो करते हैं। ये राज्य तो रुणिये के पानी मिसल है, रुणिये का पानी क्या होता है, रुणिये का पानी मृग तृष्णा, रेगिस्तान का पानी, उस प्यास के लिए पानी के लिए भटकता भटकता हिरण मर जाता है। शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, ये जिसको राज्य समझते हैं हो ये तो सभी खत्म हुआ की हुआ। जिसको तुम सुनते हमारा राज्य है ये तो अभी खत्म हुआ की, रक्त की नदियां बहनी हैं। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मार पीट करते थे, अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मार पीट होगी। चलते फिरते रास्तों पर ही मारपीट होगी, इतने से नहीं रुका बाबा, कितना खून बहता है, खून बहेगा, चलते फिरते को काट पीट के फेंक देंगी, घर से बाहर नहीं निकलना, उस टाइम अलग होगा, तब तो हम बाहर निकलेंगे ना, कटने पिटने के लिए बाहर निकलेंगे ना, क्यों नहीं निकलेंगे। इसको क्या इसको स्वर्ग कहेंगे, ऐसे को जहाँ घर से बाहर निकलो काट पीट देवे पिटाई करे हैं जी, क्या यही नई दिल्ली नया भारत है। नया भारत तो परिस्थान था, अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन है। राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं, शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते यहाँ ही मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है, जब दिन पूरा हो रात हुई तो रावण आ गया, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है, दिखाते भी हैं। वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है, देवताओं की क्या हालत हो जाती है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेंगे। बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ ना लग जाए, कहीं इनको माया का थप्पड़ ना लग जाए। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगत अम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता नहीं। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करें तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पांव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है, माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना, वो नहीं सुनेंगे इतना जल्दी। बाबा ने समझाया है ये साकार है बाहर्यामी, ये ब्रह्मा जो साकार में बैठा है ये क्या है, बाहर्यामी। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, वे है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। तो जो ब्रह्मा बाबा में आया हुआ है वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है। तो श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना, तो हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड। इसके अंदर कौन बैठा है, ब्रह्मा बाबा में कौन बैठा है, श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, वो परमात्मा है। उनको ये मकान किराए पर दिया गया है, तो ये लैंड लेडी, कौन लैंड लेडी हो गया, ब्रह्मा। ब्रह्मा है लैंड लेडी और वो है लैंड लॉर्ड, वो है लैंड लॉर्ड। तो मतलब वो है पिता तो वो है माता, दोनों है। ये मेल भी है तो फीमेल भी है, कौन मेल भी है फीमेल भी है, ब्रह्मा बाबा मेल भी है तो ये फीमेल भी है, वंडर है ना। भोग लग रहा है, अच्छा बाबा को सभी का याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को, ये एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे, जो होंगे सो देखेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है ये 8 अप्रैल 1968। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है, जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की, जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनेस्टी में सुख मिलता है, फिर जाकर के आप क्रिश्चियन बनेंगे तो क्रिश्चियन डिनेस्टी में आकर सुख पाएंगे। वेतन अच्छा मिलता है इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं, भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते, यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब, बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें, कहेंगे युक्ति से काम करो फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए, भगवान है ही एक। ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने। आप क्या करने आए हैं, हमें पूज्य देवता बनाने लिए। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना, मानुष से देवता किए करत न लागी। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही हैं सतयुग में, अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने की बनने की शिक्षा देते हैं, देवताएं हैं सभी से उत्तम। तब तो इतना पूजा पूजते हैं जिसकी पूजा करते हैं। वे जरूर कभी थे अभी नहीं है, समझते हैं ये राजधानी पास्ट हो गई। राजधानी क्या है, बीत गई है। अभी तुम हो गुप्त, कोई जानते थोड़े ही हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कोई जानते नहीं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तुम जानते हो हम पढ़कर ये बनते हैं। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्या नहीं याद करेंगे। अब ऐसे बाप को क्या याद नहीं करेंगे, फिर देवी गुण भी तो चाहिए, बिना याद के तो देवी गुण आएंगे नहीं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार और गुड नाइट, नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है, बाहर का दिखावा। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है, इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नस्तो मुहा बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है, सबका सौभाग्य जगाना है, सबका सौभाग्य जगाना है। वरदान दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को, ऐसे कर्म करो वर्तमान में जो वर्तमान भी अच्छा, भूतकाल भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा हो जाए। तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले, इच्छा मुक्त भाव, कोई तुम्हारी इच्छा ना हो कि ये चाहिए ये चाहिए। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वे सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वे भी वहा, जो हो रहा है वे भी वहा, और जो होना है वे भी वहा। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है, प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ही ना हो। कौन से संस्कार, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार, किसी प्रकार का जोश है या रोग दिखाने का संस्कार कभी भी नहीं निकले। अपनी आदतें ऐसी अच्छी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।